नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के तौर पर आज देशभर के 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए राज्य सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डांडा नूरीवाला में 58,32,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास किया और पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का अनंतिम आरक्षण जारी। आचार संहिता हुई समाप्त। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें देशभर के 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इससे इस योजना के तहत कुल वितरण 3,90,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। वहीं इस किस्त के तहत उत्तराखंड के 8,28,000 से अधिक लाभार्थी किसानों को 184.25 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि अब तक 19 किश्तों में राज्य के किसानों को 3,111 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम देहरादून के हरवंश कपूर मेमोरियल हॉल गड़ी कैंट में आयोजित होगा। इसके साथ ही अन्य स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे। शासन ने अब चारधाम और हेमकुंड साहिब की तर्ज पर मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए भी पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। इस दिशा में पर्यटन विभाग ने एक ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत कर दी है। पर्यटन सचिव धीराज सिंह गब्रियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस नई व्यवस्था के जरिए अब पर्यटकों की संख्या का सटीक आकलन किया जा सकेगा। साथ ही पर्यटन सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि आने वाले सैलानियों को किसी तरह की असुविधा न हो।
एक रियल टाइम जो डेटा है हम लोग कैप्चर करेंगे इसमें, और इसमें पोर्टल के माध्यम से उनको एक रजिस्ट्रेशन अपना कराना है। और ये नहीं कि वो टूरिस्ट जो मसूरी घूमने आ रहा है और जिसने अपना ऑलरेडी ऑनलाइन अपनी बुकिंग वगैरह करा रखी है, तो उसको सुविधा हम दूसरे ढंग से भी दे रहे हैं। हम इसको एक लिंक हम लोगों ने होटल एसोसिएशन इन लोग को भी दिया है कि जो उनके पास बुकिंग उपलब्ध है उसके आधार पर भी वो उसमें इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें। उसके दो फायदे हैं, एक तो जो टूरिस्ट आ रहा है उसको बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है, और दूसरी चीज जब होटल एसोसिएशन वाले या होटल वाले इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, एयरबीएनबी वाले करेंगे, होमस्टे वाले करेंगे, इवन धर्मशाला वाले, तो एक रियल टाइम जो डाटा हम लोग को मिलेगा उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन को शेयर करेंगे।
श्री गर्बियाल ने ये भी कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी इस तरह की पंजीकरण प्रणाली लागू करने की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की घोषणाओं और अन्य कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायक गणों से निरंतर संवाद बनाए रखें और उनकी प्राथमिकता वाले कार्यों में तेजी लाएं। किसी कार्य में समस्या आने पर संबंधित विधायक, सचिव और विभागाध्यक्ष मिलकर समाधान निकालें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी 70 विधानसभाओं में घोषणाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शासन प्रशासन और विधानसभा क्षेत्र के बीच सेतु की भूमिका निभाने के लिए अपर सचिव स्तर के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। हर विधानसभा में सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत को उजागर करते हुए नवाचार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने हरिद्वार में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए विस्तृत योजना और सर्वे का काम जल्द पूरा करने को कहा। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर स्थायी जल व्यवस्था के लिए एक माह में डीपीआर तैयार करने और संजय झील को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य गंगा समिति की 18वीं बैठक आयोजित हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने गंगा संरक्षण और कायाकल्प से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यदायी संस्थाओं को गंभीरता से काम करने को कहा। जिला गंगा समितियों की बैठकें समय पर कराने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने जल निगम के अंतर्गत सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण शीघ्र पूरा करने और नई प्लांट बनाने से पहले समिति की संस्तुति लेने पर जोर दिया। कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग के एसटीपी निर्माण में हो रही देरी पर संबंधित जिलाधिकारियों को भूमि हस्तांतरण सहित सभी कार्य एक माह में निपटाने को कहा गया। श्री वर्धन ने पूरे राज्य में सीवेज प्रबंधन का गैप एनालिसिस करने तथा गंगा के सहायक नदियों के बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण और जल विज्ञान सर्वेक्षण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा रोड स्थित डांडा नूरीवाला में 58,32,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भवन ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होगा, जहां विभाग की प्रमुख योजनाएं एक ही परिसर से संचालित होंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार एक जनपद दो उत्पाद योजना के जरिए स्थानीय आजीविका को बढ़ावा दे रही है और हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला रही है। श्री धामी ने जोर देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक 25 करोड़ रुपए के कारोबार का है, जिससे हजारों युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को स्थायी आजीविका से जोड़ा जा सके। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये भवन पहाड़ी शैली में बनाया जाएगा और इसमें सौर ऊर्जा की संपूर्ण व्यवस्था होगी। प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सभी परिणाम घोषित होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण का अनंतिम प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। इस प्रस्ताव पर 2 से 4 अगस्त के बीच आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम आरक्षण 6 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने पहली बार पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों को लागू किया है। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार द्वारा जारी आरक्षण प्रस्ताव में कहा गया है कि ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में लागू आचार संहिता को निष्प्रभावी कर दिया है। इस बार चुनाव 2 चरणों में 24 और 28 जुलाई को कराए गए थे, जिनकी मतगणना 31 जुलाई को शुरू हुई थी। शुक्रवार शाम तक सभी जिलों के परिणाम घोषित होने के बाद आचार संहिता हटा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारतीय सेना की मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में सेना द्वारा स्थानीय समुदायों की सहायता और प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्यों में दिए गए सहयोग की सराहना की। मुख्यमंत्री ने सेना के योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनकी सभी महत्वपूर्ण पहलों में सहयोग करती रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता ने सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए मध्य कमान की ओर से संचालित कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक विकास, बुनियादी ढांचे के निर्माण, युवाओं से संवाद और अग्रिम क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पहल कर रही है। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष के बीच निर्दलीयों की जीत की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, पंचायत चुनाव में निर्दलीयों का डंका, भाजपा आगे और कांग्रेस को भी बढ़त। दैनिक जागरण का शीर्षक है, भाजपा बम बम, निर्दलीयों ने भी दिखाया दम। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए शासन द्वारा अनंतिम आरक्षण जारी करने की खबर को भी सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के तौर पर आज देश भर के 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए राज्य सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डांडा नूरीवाला में 58,32,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले ग्राम्य विकास भवन का शिलान्यास किया और पंचायत चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का अनंतिम आरक्षण जारी, आचार संहिता हुई समाप्त। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।